ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार और आंदोलनरत शिक्षकों के बीच हुई 9 सूत्रीय सहमति, आज ही मंत्रिपरिषद बैठक द्वारा किया गया अनुमोदन। युवाओं में आशा जगाने के हिसाब से नीति तथा कार्यक्रम लाने का सत्ता पक्षीय दलों ने दिया सरकार को सुझाव। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संरक्षक रेशम चौधरी रिहा। चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए अनाधिकृत पत्र लिखने के निर्णय को लागू करने वाले निर्देशनालय के अधिकृत गिरफ्तार। और शनिवार को रोम में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता करने की ईरान की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। सरकार और नेपाल शिक्षक महासंघ के बीच 9 बिंदुओं पर सहमति बनी है और आज ही इस सहमति को मंत्रिपरिषद की बैठक ने अनुमोदन भी किया है। ये जानकारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुजी पंत ने दी। इसके साथ ही शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस लेकर विद्यार्थी भर्ती अभियान और परीक्षा कार्यक्रम संचालन करने का निर्णय किया है। शिक्षक महासंघ की प्रमुख मांगों जैसे सहायक शिक्षकों का स्थायीकरण, वेतन संरचना में सुधार और पदोन्नति नीति को समझौते में शामिल किया गया है। आज से आंदोलन के सभी कार्यक्रम वापस लिए गए हैं और गुरुवार से स्कूलों में भर्ती व परीक्षाएं सामान्य रूप से संचालित होगी। समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी जिसमें शिक्षा मंत्रालय और शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेपाल शिक्षक महासंघ चैत 20 गते से काठमांडू में प्रदर्शन कर रहा था जिसमें देशभर के स्कूलों में पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए थे। सत्तारूढ़ दलों ने लोकतंत्र को मजबूत करने और उस पर हमलों का सामूहिक जवाब देने हेतु नीति कार्यक्रम बनाने का सरकार को सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री निवास बालोटार में आज सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की बैठक में लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाने तथा लोकतंत्र पर हो रहे हमलों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए सरकार को नीति एवं कार्यक्रम लाने का सुझाव दिया। निकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गावाली ने बताया कि बैठक में नीति एवं कार्यक्रम में विकास निर्माण के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में आशा जगाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के खर्च करने की क्षमता बढ़ाने जैसे सुझाव भी सामने आए। महासचिव ग्यावाली ने शिक्षकों के आंदोलन और समस्या समाधान हेतु चल रही वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि कल से स्कूलों में सामान्य रूप से पठन पाठन शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की मांगों पर कानून बनाने हेतु विधेयक प्रक्रिया में है। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संरक्षक रेशम चौधरी आज दोपहर रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला क्रियान्वयन निर्देशनालय के अधिकृत महिमान सिंह विस्ट द्वारा लिखित पत्र के आधार पर संरक्षक चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। अब अदालत द्वारा ये पत्र अनधिकृत बताए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये जानकारी काठमांडू जिला प्रहरी परिसर के प्रवक्ता एवं एसपी अपील राज बोहरा ने दी। एसपी बोहरा ने बताया कि अनधिकृत पत्र लिखने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के फैसला क्रियान्वयन निर्देशनालय के अधिकृत महिमान सिंह विस्ट को नियंत्रण में लिया गया है। बता दें कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संरक्षक चौधरी को जनमत और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के बीच आज होने वाले एकता घोषणा कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय प्रज्ञा भवन परिसर से गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष नेपाल के लिए 5 विभिन्न देशों के नवनियुक्त और गैर आवासीय राजदूतों ने अपने अपने ओहदे का प्रमाण पत्र पेश किया है। राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित अलग अलग विशेष समारोह में गणतंत्र बेलारूस के गैर आवासीय राजदूत मिखाइल कास्को, जॉर्जिया के गैर आवासीय राजदूत बख्तांग, गणतंत्र माली के गैर आवासीय राजदूत ब्रिगेडियर जनरल फेलिक्स डीएलओ, कुवैत राज्य के गैर आवासीय राजदूत मेसल मुस्तफा जे अल से माली और गणतंत्र आर्मेनिया के गैर आवासीय राजदूत बहगन अफियान ने अपने अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में आंखों के स्वास्थ्य को शामिल करने की बात कही है। काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस द्वारा आयोजित इनसाइट ऑफ लाइफ 2030 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि दृष्टिहीनता के जोखिम वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आंखों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ओली ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र की रणनीतिक योजना में वर्ष 2030 तक प्रभावी मोतियाबिंद सर्जरी कवरेज को वर्तमान 45% से बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य रखा गया है। सम्मेलन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि नेपाल आंखों के उपचार को और बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में इसे एकीकृत करने के साथ साथ स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में मजबूत साझेदारी विकसित करने पर काम कर रहा है। सम्मेलन में लगभग 100 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि #1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कलाकारों से समाज में जागृति लाने का आह्वान किया है। काठमांडू में राष्ट्रीय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल के 9वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कलाकारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी रचनात्मक गतिविधियों को और तेज करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि कलाकारों की सृजनात्मक पहल जनता की समृद्धि, स्वतंत्रता और शांति के लिए महत्वपूर्ण है, जो समाज के परिवर्तन में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कलाकारों से किसी के दबाव या बहिष्कार की धमकी के बावजूद अपने स्वतंत्र विचारों को न छोड़ने का भी आग्रह किया। सार्वजनिक प्रसारण सेवा नेपाल और बीबीसी मीडिया एक्शन नेपाल के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। सिंहदरबार स्थित रेडियो नेपाल केंद्रीय प्रसारण कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मौसम और आपदा संबंधी कार्यक्रमों तथा समाचार प्रसारण में प्रयुक्त होने वाले जटिल तकनीकी शब्दों को सरल शब्दावली में परिवर्तित करना था। कार्यशाला के समापन समारोह में सार्वजनिक प्रसारण सेवा नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने आपदा संबंधी प्रसारण को विशेष प्राथमिकता देने के उद्देश्य पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों से प्राप्त ज्ञान को प्रभावी ढंग से व्यवहार में लाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी ने देश के आर्थिक सामाजिक सुधार हेतु मांग पत्र सौंपा है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री ओली को मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, सुशासन, विदेश नीति और संविधान के पुनरावलोकन संबंधी सुझाव शामिल है। गृहमंत्री रमेश लेखक से भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथावाले ने आज मुलाकात की। नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंचे भाजपा के विदेश विभाग प्रमुख चौथावाले ने सिंहदरबार स्थित मंत्रालय पहुंचकर गृहमंत्री लेखक के साथ वार्ता की। इस मुलाकात में गृहमंत्री लेखक ने भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि नेपाल सरकार आतंकवादी हमलों के खिलाफ है। मंत्री लेखक ने बताया कि नेपाल भारत के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध को और मजबूत बनाने के विषय पर भाजपा के विदेश मंत्री के साथ चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा के सांसद खम बहादुर गबुर जाल को ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने पिछले 31 असार को गठित वर्तमान मंत्री परिषद में नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर उन्हें आज राज्य मंत्री पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। आज अक्षय तृतीया का पर्व सत्तू और सर्वत दान एवं सेवन के साथ उत्सव मनाया गया। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाए जाने वाले अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज सत्तू और सर्वत का दान एवं सेवन किया गया। विभिन्न पुराणों में वर्णित है कि आज के दिन किया गया स्नान, दान, ध्यान, जप आदि पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होता। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान ने शनिवार को रोम में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की घोषणा की है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वो इस शनिवार को इटली की राजधानी रोम में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर वार्ता करेगा। 2018 में अमेरिका द्वारा एकतरफा समझौते से हटने और प्रतिबंध लगाने के बाद से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बना हुआ है। इस वार्ता का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करना और समझौते को फिर से लागू करना है। यूरोपीय संघ, रूस और चीन लगातार देशों ने इस वार्ता का स्वागत किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और आंदोलनरत शिक्षकों के बीच हुई 9 सूत्रीय सहमति आज ही मंत्रिपरिषद बैठक द्वारा किया गया अनुमोदन। युवाओं में आशा जगाने के हिसाब से नीति तथा कार्यक्रम लाने का सत्तापक्षीय दलों ने दिया सरकार को सुझाव। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संरक्षक रेशम चौधरी रिहा चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए अनधिकृत पत्र लिखने के निर्णय को लागू करने वाले निर्देशनालय के अधिकृत गिरफ्तार और शनिवार को रोम में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता करने की ईरान की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।